أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی بات کے لیے جمع کیا. ہم اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت اپنے لیے نکال کر اس کو مائی ٹائم بناتے ہوئے ایک بار پھر اپنی پرسنل گرومنگ کے لیے یہاں موجود ہیں. اللہ کرے کہ ہم وہ چیزیں سیکھیں جو ہمارے دین کے معاملات میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی بہتری کا ذریعہ بنے. افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں کچھ حد تک تو یہ سوچ ہے کہ علمی قابلیت تو بہت بڑھائی جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ اخلاقی چیزیں نہیں آتی آگے، اور دوسری طرف پرسنل گرومنگ پہ تو بہت ہی کم توجہ ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص 4-6 سال تک کہیں پڑھ کے پڑھا کر الحمدللہ دین کے نام پہ بہت ہی قیمتی شخصیت بن چکا ہوتا ہے، لیکن کانفیڈنس نہیں ہوتا، آئی کانٹیکٹ نہیں ہے، باڈی لینگویج کچھ ایکسٹرا ہی ہے، اور اس طرح کا کچھ گیٹ اپ ہوتا ہے کہ جس سے انسان ایک خاص مخصوص طبقے کو تو متاثر کر سکتا ہے کہ جو اسی جیسی سوچ رکھتے ہوں، لیکن ایسا شخص ان لوگوں کے قریب بھی نہیں جا پاتا کہ جن کو پہلے ہی دین اچھا نہ لگے، اور خاص طور پہ جب وہ دین سیکھنے جائیں تو بہت ہی اعلیٰ، ویل ڈریسڈ، ویل مینرڈ، بہت ہی پروفیشنلز قسم کے ٹیچرز اور انسٹیٹیوٹ کو رن کرنے والوں کے پاس جائیں، لیکن جب دین سیکھنے آئے تو پھر ڈنڈے کا لفظ بھی عام ہو اور باقی بھی چیزیں. نہ جانے کیوں آج ہم لوگوں نے دین کے ساتھ غربت کو عام کر دیا، حالانکہ دین تو غربت مٹاتا ہے، جسمانی بھی، ذہنی بھی، قلبی بھی. اگر آپ کی زندگی میں کہیں بھی کوئی احساس محرومی ہے نا، تو اس کو آج لکھ کر رکھ لیجئے، اور اگر آپ اس راستے پہ چلتے رہے تو ود ان فیو منتھس آپ خود کو الحمدللہ پسند کرنے لگیں گے. بیسیکلی اس پوری سیریز کا نام گول سیٹنگ ہے. تو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے نتھنگ از امپاسبل. ہر امپاسبل کے اندر ایک پاسبل چھپا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جب ہم دین کے کام کرنے کے دعوے دار، دنیا میں دین کو عام کرنے کے خواہش مند، اور اسی طرح کے بہت بڑے بڑے دعووں کو کرنے کے بعد جب یہ کہتے ہیں میرے لیے تو ممکن نہیں، ہمارے لیے تو ممکن نہیں، اس شہر میں تو یہ ہو نہیں سکتا، لوگوں کو تو یہ شوق نہیں، وہ نہیں، تو وہ بھی ایک قسم کی ہم بدگمانی اور غیبت پہ مائل ہونے لگ جاتے ہیں. ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے بعض اوقات کہ سارا قصور دوسروں کا، نہ لوگوں کو سیکھنے کا شوق، نہ سکھانے کا شوق، نہ لوگوں کے اندر کوئی خیر ہے، نہ جانے کیا کچھ، اللہ معاف کرے. تو ان ساری چیزوں کے درد کو محسوس کرتے وقت میں اپنی یہ ساری سیریز ان سارے ساتھیوں کے نام پہ رکھتی ہوں کہ جو واقعی کہیں بھی دین کا کام کر رہے ہیں، یعنی دین کے نمائندوں کے لیے، امبیسیڈرز آف اسلام. تو پھر آپ میں سے جو یہ نہیں کرتا وہ کہے گا میرے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اوور آل بینگ اے نیشن اور بینگ اے مسلم، ہم پوری دنیا میں امبیسیڈرز آف اسلام ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تاکہ تم نے اپنے ارد گرد والوں پہ اثر ڈالنا، تاکہ تم ان کو اسلام کے قریب لے آؤ. کوئی ڈاکٹر ہے تو بھی ڈاکٹرز میں، اور اسی طرح سے ہر شخص اپنے فیلڈ میں کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم سب کردار سازی پہ غور کریں. وہ کیوں کہا گیا تھا کہ خدا تجھے جدت کردار عطا کرے، کچھ اسی طرح کا شعر تھا علامہ اقبال کا. وہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں میں وہ کردار نہیں ہے جو محمد رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کا تھا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں اپنے کردار کی خوبصورتیوں سے منا لیتے تھے نا، بعض دفعہ ہمیں اپنی آوازوں کے اونچا کرنے اور اس کے غصے اور اس طرح کے حالات کی وجہ سے کرنی پڑتی ہیں. فائدہ نہیں ہوتا، آپ کا تو بچہ نہیں آپ کے غصے کو مانے گا، بڑے لوگ کہاں امپریس ہوں گے. تو افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج تو ہم انسانوں کے پیارے نہ رہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آسمانوں پہ رب کے پیارے ہم ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہماری کو بات چن لے تو اور بات ہے. تو انشاءاللہ آپ نے، میں نے ان سارے لیکچرز کے تھرو نہ صرف یہ کہ خود، بلکہ جہاں بھی آپ کو ٹیم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ لوگ کام کرتے ہیں، ان کو اسے فائدہ دینا ہے. اور سب سے پہلے تو میں نے خود فائدہ لینا ہے، کیونکہ جب تک میں خود اسے فائدہ نہیں لوں گی دوسروں کو فائدہ نہیں دے سکوں گی. اور یہ سیشنز آپ کو مجھے اس قابل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ کی مدد بندے کے ساتھ مشروط ہے. آج جو بات کرنے لگی ہوں نتھنگ از امپاسبل، تو اس میں بھی تو آپ دیکھ لیجئے نا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے مواقع دیے، آپ کے میرے لیے زندگی گزارنے کے خوبصورت مواقع دیے، پھر کیوں ہم ناکام ہیں؟ ہم اکثر یہ رونا کیوں روتے ہیں کہ پاکستان خراب ہے، یہ نہیں بدل سکتا، یہاں سے کرپشن نہیں جائے گی. پھر کوئی اپنے ادارے پہ آتا ہے کہتا ہے میرے ادارے میں تو کوئی مخلص ہی نہیں، سب سست ہو گئے، کسی میں کوئی خوبی نہیں. یعنی عموماً हम अपने मुल्क से शुरू कर ले, और अगर बीइंग अ मुस्लिम पे भी ले जाएं तो हम उस पे भी कोई ज़्यादा पुरकशिश नहीं महसूस करते खुद को। हम कहते हैं मुसलमान तो बेकार, ऐसे लगता है कि हर ख़राब चीज़ का नाम इस्लाम के साथ जोड़ दो, और इस्लाम को एक सौतेला बच्चा समझकर लोगों के सामने डांटो, गुस्सा करो, या दूसरों के सामने प्यार 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 और अकेले में घूरो। कुछ लोगों की आज कैफियत कुछ इसी किस्म की दिखती है कि वो इस तरह की बातें कर करा के इस्लाम का मोरल डाउन करते हैं। तो ऊपर से अगर बात शुरू करूँ तो बीइंग अ नेशन कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जिसको टाइटल मिला पूरी नेशन के तौर पे उम्मत मुस्लिमा, फिर उसके बाद हम में से हर एक अपने अपने मुल्कों पे आ जाए, मुल्कों से फिर हम इंस्टीट्यूट्स पे आ जाएं, चाहे वो वापडा का इंस्टीट्यूट है या PIA का है, फिर उसके बाद हमारे मजहबी इदारे, वो मसाजिद हैं, वो हमारे नूरुल कुरान जैसे कोई इदारे हैं, या हर एक ने जिसने अपने हिसाब से किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया हुआ है, उसके अंदर कमी बेशी की वजह क्या है कि आज हम अल्लाह ताला की उस मदद के मुस्तहक नहीं दिख रहे कि जिसके साथ अल्लाह ताला की मदद आती है। दो आयतें आज इस सिलसिले में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और ज़्यादा वजाहत में नहीं जाऊँगी, सिर्फ इशारे मकसूद हैं। और उसमें से एक आयत तो सूरत अलनकबूत की बिल्कुल आखिर की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो लोग जो हमारे रास्ते में मेहनत करेंगे हम ज़रूर उनको अपने रास्ते दिखाएंगे। इसको ही शायद उर्दू में किसी ने कहा था कि ढूंढने वालों को मंजिलें हम देते हैं, और पता नहीं एक दो शेर, मुझे शेर नहीं आते, मैंने पहले ही माफ़ी मांगी भी है सबसे ही, सारे शोरा से भी, पर आपको भी बताऊं कि मेरा किसी लेक्चर किसी क्लास में कोटेड शेर कहीं भी आगे एज अ शेर करके आप कोट ना कीजिए, दूसरे की बात ठीक होगी मेरी गलत होगी, लेकिन मफहूम बड़ा प्यारा होता है। अशार में बात वाजे हो जाती है, तो बिल्कुल यही बात जो कहा गया कि हम आज वो नहीं रहे कि जिनके साथ अल्लाह की मदद के वादे थे। सबक फिर पढ़ शिजात का, सदाकत का, एक ये भी शेर है, यानी जब मुसलमान दोबारा उस किरदार पे आ जाएगा जिसके ऊपर फिर मदद आती, वही बात है, उतरते हैं फरिश्ते आज भी, आज भी अल्लाह ताला की मदद बदर वाली मदद है, लेकिन शर्त क्या है कि तुम अपने अंदर कोशिश तो लाओ। हम कुछ भी काम करना चाहते हैं, आप इस वक्त अपने अपने प्लेटफॉर्म जहाँ भी आप मेरी बात सुन रहे हैं उसको जहन में ले आइए। बिगड़ी से बिगड़ी दुकान सेट नहीं हो रही, कारोबार सेट नहीं हो रहा, या आपके दूसरे कामों में रुकावट है, और एक हाउसवाइफ है जो वो कह ले कि उसके बच्चे उससे नहीं संभल रहे, तो अल्लाह ताला के तो वादे हैं कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो लोग जो हमारे रास्ते में जिद्दोजहद करते हैं हम तो उनको रास्ते दिखाते हैं, ढूंढने वालों को मंजिलें भी नहीं देते हैं, उठते हैं हिजाब आखिर आता है जवाब आखिर। तो ये सारे वादे फिर क्या हैं? अगर आप मैं ये कह देते हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारा काम ठीक नहीं हो रहा, या फिर हमसे सही नहीं होना, फिर कोई कहता है हम पे जादू हो गया, किसी ने रिस्क बांध दिया, है ना, ऐसी चीज़ें हमारे कल्चर में आम, यानी लोग अमूमन अपने मुर्दे दूसरों पर डाल देते हैं, और कह लीजिए कि कुछ लोगों ने आधे कुएं तो खोदे ही होते हैं, और आधी कोशिशों को पूरी कोशिशें समझ कर इस तरह से दुनिया में पोर्ट्रेट करते हैं, मैंने तो पूरी कोशिश की, पूरी नहीं होती। जो चीज़ आपके सामने इस वक्त है वो क्या है कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना वइन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, आयत 69 है जो आखिरी आयत है सूरत अलनकबूत की 21वें पारे में, अल्लाह ताला फरमाते हैं और वो लोग जिन्होंने हमारे रास्ते में मेहनत की, कोशिश की, जिद्दोजहद की, हम अलबत्ता ज़रूर उनको अपने रास्ते दिखाएंगे, और बेशक अल्लाह ताला तो मुहसिनीन के साथ है। पहले तो इसको नोट कीजिए, अल्लाह ताला तो आपसे मुझसे ये कहे कि हम आपकी मदद करेंगे, और आप और मैं क्या कहें कि अल्लाह मदद नहीं करता, तो क्यों नहीं करता? तो फिर लिखिए, इसका जवाब लिखिए, हमारी कोशिशों में कमी होती है, हम अधूरी कोशिशों के साथ पूरे फवायद लेना चाहते हैं, हम होते सस्ते हैं बिकना महंगा चाहते हैं, हमारी कीमत चंद सौ ना कोई दे, हम हजारों की उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, तो हमारी कोशिशें पूरी नहीं हैं, अधूरी कोशिशों के साथ पूरी मदद नहीं आती। हम अपने जहन में ख्याल बना लेते हैं कि मैं ये काम करूंगी तो आसान होगा, ये होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद वो कोशिशें नहीं है, वो कुर्बानियाँ नहीं है, वो हिजरतें नहीं है। अल्लाह ताला का वादा है ऐसे लोगों से कि जो अल्लाह के रास्ते में अनथक कोशिश करेंगे, जो मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला पर नजरें लगाएंगे, अल्लाह ताला उनकी मदद ज़रूर करते हैं। और इसके लिए आपके सामने रखूंगी सूरत नजम की आयत, जो आपने शायद बीसियों बार कुरान खानियों में और कुरान पाक के दौर करने में पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन आज इस वक्त इस सेशन में जो एक सरासर ट्रेनिंग सेशन है, जो पर्सनल ग्रूमिंग का सेशन है, लेकिन इसको आपके साथ शेयर करने से मुझे ये फ़ायदा होगा کہ آپ کو آج ایک فرق سمجھا کر جاؤں. آیت کا نمبر ہے 39, سورت نجم ہے. وَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اگر ایک ایک لفظ کے اوپر نظر ڈال لینا, اور بے شک نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی. اور اگر ایک سٹریچ میں کہہ دوں, اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں مگر وہ جس کی اس نے سعی کی. یہاں ایک چور چھپا بیٹھا ہے جو میری آپ کی رکاوٹ کے راستے کا دشمن ہے. اور وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ ہم صرف کوشش کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ مطلوب سعی ہوتی ہے. دو لفظ ہیں, ایک ہے کوشش. آپ کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی. کوشش کو آپ انگلش میں سمجھیے سٹرگل. ہم سٹرگل کر رہے ہیں, اتنے سال سے سٹرگل کر رہے ہیں, ادھر کوئی سیٹ اپ ہی نہیں بن رہا. میں اتنے سال سے سٹرگل کر رہی ہوں اور میرے رشتہ داروں میں کوئی بات ہی نہیں بن رہی. یعنی آپ کا میرا جو فیلڈ ہے اس کو رکھیں. ہمارا چونکہ دن رات کا پیشن دین پھیلانا, قرآن پڑھنا پڑھانا, جاگو اور جگاؤ اور انلائٹن دا ہارٹس ود دا نور آف ال قرآن, یہی نور القرآن کا مطلب ہے نا. میری مثالیں آپ کو موسٹلی ریلیجیس مثالیں لگیں گی اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. کہ آخر ہم دین کے نام پہ بھی جو کوششیں کر رہے ہیں وہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہی. اتنے ادارے, ہر سال ہزاروں لوگ ایک ایک ملک سے ماشاءاللہ فاضلات کی ڈگریاں لے کر نکلتے ہیں. اگر آپ سعودیہ کے ام القرآن اور مدینہ یونیورسٹی اور ریاض یونیورسٹی سمیت بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ اور اداروں کی بات کریے, الحمدللہ وہاں سے کھیپ کی کھیپ تیار ہوتی ہے علماء کرام کی, کہ جو ماشاءاللہ ڈائریکٹ ریسورسز سے لے کر نکلتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے تو مسجدوں میں کمی نہیں ہے. آج اتنے قرآن چھپتے ہیں جو اللہ کے نبی کے دور میں تو موجود ہی نہیں تھے اتنے قرآن. تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج دین کا رنگ غالب نہیں, آج دین لوگوں کے دلوں کو مسحور نہیں کرتا, آج دین کا فیشن نہیں ہے. آج دین کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ فیشن نہیں ہے. تو ایک جملہ لکھیے گا, ہماری کوشش کی ڈگری کم ہے, درجہ کم ہے. اس کو سعی میں بدلنے کی ضرورت ہے. سعی اور کوشش میں فرق کیا ہے؟ جو انگلش کے دو لفظوں میں, ایک طرف ہے سٹرگل اور ایک ہے سٹرائیو. دونوں میں فرق. سٹرائک نہیں کہہ رہی, ہم سٹرائک کر لیتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں نا ہماری بات نہیں سنی جا رہی, تو پھر شور بچا کے ہڑتالیں کر کے اور لوگوں کو کہہ کے ایجیٹیشن ہے اور ہم اپنے حقوق لینے آئے. کوئی مزدوروں کے حقوق دلا رہا ہے, کوئی عورتوں کے دلا رہا ہے. نہیں, یہ سٹرائک نہیں, سٹرائیو. ہماری سٹرگلز جب تک سٹرائیو میں نہیں بدلیں گی کامیابی نہیں ہوگی. پھر جب آپ قومی سطح سے نیچے آتے ہیں, یعنی آپ کو قومی سطح پہ لوگ اچھے نہیں لگتے, اکثر لوگوں کے منہ سے یہ جملے نکلتے ہیں آج کے مسلمان بیکار ہیں, ان کا کیا, دیکھو گوروں کو دیکھو, وہ دیکھو. وہ ایسے دفاع کرتے ہیں غیر کلچر لوگوں کا یا غیر مسلموں کا جیسے شاید ہمیں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا کرنا چاہیے. ان کے خیال میں تو اس وقت مسلمان بالکل کٹے دبے ہوئے لوگ ہیں. تھوڑا سا آپ نیچے آتے ہیں تو لوگ اپنے نیشنل لیول پہ باتیں کرتے ہیں. مثلا اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو لوگ پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں جی پاکستان صحیح نہیں ہوگا, ادھر رشوت نہیں ختم ہوگی, ادھر سے شرک نہیں ختم ہوگا, یہ بھی ناممکن, یہ بھی ناممکن, یہ بھی. یہی چیز میرے خیال ہے انڈیا میں رہنے والے اور بنگلہ دیش سمیت پوری دنیا کے وہ لوگ کرتے ہوں گے جن کو وہاں کوئی رنگ نہیں دکھ رہا. تو لکھیے, ایک تو وہ بھی وقت تھا کہ پاکستان کا تو بننا بھی ناممکن تھا, تو یہ کیسے ہو گیا کہ اب سدھرنا ناممکن ہو؟ اللہ تعالیٰ ناممکنات میں سے ممکن کو نکالتا ہے. یاد رکھیے, جب ہماری کوششیں سعی میں بدلیں گی تو ہمارے انسٹیٹیوٹ, ہمارے ادارے, ہمارے پلیٹ فارمز, ہماری ویب سائٹس, ہمارے ایپس, ہماری زوم کلاسز اور ہماری یوٹیوب چینل کی اور فیس بکس کی لائیو براڈ کاسٹ اور سو آن, جو مجھے نام نہیں بھی یاد, وہ سب بہتر ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ جو لوگ کام کریں وہ مشن کے درجے پہ کام کریں. یہ ان کا پروفیشن تو نہ ہو لیکن پروفیشنلی کام کریں. یاد رکھیں کہ ناممکن لفظ لکھے ناممکن, یا انگلش میں لکھ رہے ہیں تو امپاسیبل, یہ کیفیت ہے, یعنی یہ حقیقت نہیں ہے. دس از جسٹ لائک اے اسٹیٹ آف مائنڈ. اور اس کی سب سے بڑی وجہ اعتماد کی کمی ہوتی ہے. کس پہ اعتماد کی کمی؟ سب سے پہلے اپنی ذات پہ اعتماد کی کمی, اور سب سے بڑھ کر اللہ پر نظریں لگانے کی کمی. اللہ پر جب نظریں لگتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. یہ جو اللہ کے وعدے سورت نجم میں ہے نا کہ اللہ ماں سا, تو یہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے. تو کیا ہے پھر اللہ کا وعدہ؟ کہ جب تم پورے جذبے سے کچھ پانے کی کوشش کرو گے تو کائنات کی ہر چیز تمہاری معاون بن جائے گی. اصحاب کہف کا قصہ سبھی جانتے ہیں, کیسے چند لوگ نکلے تھے اس دور کے تاغوت کے سامنے, گھٹنے نہ ٹیکے, خالی ہاتھ نکلے تھے, بڑے گھروں کی نسل تھی لیکن گھر کے آرام دہ ماحول کو چھوڑ کر غار میں آ گئے. کمفرٹیبل زون سے نکل کر, کمفرٹ لیول سے ہٹ کر انہوں نے हो सकता है कि ईंट का तकिया बनाया होगा, लेकिन सच्चे थे। अल्लाह ने कैसे गार को, सूरज को और कुत्ते को और जिन चीज़ों का वहाँ तذکرہ है और उनकी करवटों का बदलना और सूरज को कहाँ से निकलना कहाँ ना मुआविन न कर दिया। तो याद रखिएगा, जब आप अल्लाह पर नज़रें लगाकर कोई काम करते हैं और सच्ची नीयत से करते हैं, इखलास की आखिरी हद पे जाने की कोशिश करते हैं, फिर आप उस पे तन मन धन लगाने को तैयार हैं। दूसरों से क्यों मांगते हैं, पहले अपना तो पूरा कीजिए। आपको तो उस दिन देंगे मौका जिस दिन हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये कैफियत होती है। तुम्हें क्यों दे दें इस नेकी के खैर में शेयर? आप देखिए ना कि अगर किसी जगह शेयर्स हों और एक लगाकर 10 मिलना हो, तो क्या पहले आप अपने एसेट्स नहीं उसमें लगाएंगे? आपके दूसरे कोई बिजनेस का मौका दें कि वो अपने पैसों को 10 गुना में बदल कर वापस ले ले कुछ माह में, और आपके जो एक था वही की पड़ा रहे। पहले तो आप अपना लगाते हैं, फिर उसके बाद आप दूसरों को कहेंगे ना। टेंडर्स खुलते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लोग पहले अपने ऊपर लगाते हैं। जब अपनी कर चुके और अब नहीं, तो फिर चलो जो अपने लिए पसंद किया वो अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद कर लो। ये तो कैफियत समझ आ जाती है। लेकिन जब ऐसी कोशिशें ना हो, दूसरों पे नजरें ज्यादा हों, खुद वो ना दें जो दूसरों से मांग रहे हैं, तो याद रखिए अल्लाह की मदद नहीं आती। जब आप इस दर्जे पे खड़े होते हैं, तो देखिए आपको ऐसे लगेगा कि लोग आपको रास्ता देने लग गए। तेज चलती गाड़ी के आगे कोई नहीं आता। मैंने कुछ लेसन्स बहुत जवानी, कह ले शादी से भी पहले, अपने वालिद के साथ लिए। फर्स्ट टाइम स्टेयरिंग जो पकड़ा, उनके कहने पे पकड़ा होगा। उस दौर में भी वो कहते थे कि आपको सीखना चाहिए। ये अलग बात है कि चलाता कोई नहीं था, लेकिन सब सीखने का शौक था, तो उस वक्त उन्होंने ये असूल सिखाया था। अगर तुम तेज गाड़ी चलाओगे, यानी मुराद स्मूथ, तो तुम सबसे आगे होगे, क्योंकि पिछले लोग तुम्हें खुद ही रास्ता देंगे, इनको जाने दो। और अगर आप ऐसा गाड़ी चलाएंगे तो सबसे पीछे रह जाएंगे, लोग आपको इंडिकेटर देके आगे चलते जाएंगे। जिंदगी की दौड़ पे याद रखिएगा, बहुत ढिचकू ढिचकू चलने वालों को लोग पीछे छोड़ जाते हैं, और तेज चलने वाले को लोग रास्ता देते, इसको जाने दो भैया, कहीं हमें ही ना टक्कर मार दे। फिर कायनात में इशारे आते हैं, आपको ख्वाब आने लगते हैं। अल्लाह के नबी को सच्चे ख्वाब आ जाते थे, उस वक्त भी नबूवत से पहले की सारी चीज़ें थी। ऐसे लगता है कि अंदर से उठता है कि तुम्हें जाना किधर है। यही है वो फुरकान जो अल्लाह ताला ने कह दी, वमे यूमिन बिल्लाह यख्दी कल्बा। जो अल्लाह पर ईमान लगता है, जो अल्लाह पर नजरें लगाता है, उसका दिल भी हिदायत की तरफ उसको डालने लगता है। आपको खुद पता लगने लगता है मैंने करना क्या है, मैंने क्या रास्ता लेना है, इधर जाना है उधर जाना है। अल्लाह की मदद है, अल्लाह की सपोर्ट है, आपके तो वहमो गुमान में नहीं होता, अल्लाह आपको वहां ले जाता है। कोई मूसा ने सोचा था अलैहिस्सलाम ने कि ये जिस तरफ मेरे कदम चल पड़े हैं, कत्ल का जुर्म सर पे लेने के बाद, ये मेरे लिए रोटी कपड़ा और मकान के साथ नबूवत के रास्ते हमवार हो रहे हैं? याद रखिए, बंदे को पहले नहीं पता होता। अल्लाह अपने नबी को फरमाते हैं, वमा कुंत तरजू, आप तो गुमान भी नहीं करते थे कि नबी आपको मिल क्या जाना है। आज भी जब लोग नए नए फॉर्म्स फिल करते हैं, कोर्सेज में आते जाते हैं, तो मैं उस वक्त भी यही कहती हूँ कि इनको क्या पता इन्होंने क्या साइन कर लिया। इन्होंने तो बस एक बात सुनी और मान ली और यकीन कर लिया। इनको तो बहुत कुछ मिलने वाला है। इनको अगर इसका आज पता लग जाए कि ये सबील उल जन्ना सिर्फ सबील उल जन्ना नहीं है, ये तो जन्नत है, रास्ते से आगे जाके मंजिल है। और इनको क्या पता कि ये ला तहजन और डोंट बी सैड इनके सिर्फ दुनिया के गमों का इलाज नहीं है, ये तो इनकी हमेशा की जिंदगी को टेंशन फ्री जिंदगी बनाने का है। तो पता नहीं ये और क्या ना कर दे। तो सारी बात का खुलासा याद रखिएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर इम्पॉसिबल के अंदर पॉसिबल छुपा हुआ है। तवक्कुल अल्लाह पे हो, कोशिश को साई में बदले, ये जुमला लिख लीजिए, कोशिश को साई में बदलिए, स्ट्रगलिंग से भड़कर स्ट्राइव करने के दर्जे पे आ जाइए। ये ना कहें कि हिस्सा डालना है, हिस्सा बनना है। कोई चीज नामुमकिन कब है? नामुमकिन लफ्ज का मतलब मेरे से आज एक लिख के ले जाइए। नामुमकिन का मतलब ये है, आपने इस चीज का हल ढूंढा ही नहीं है, आपने इस पे नजर नहीं लगाई। बस जो कोशिश करते हैं उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। और एक जुमला लिखिए, हर अजीम काम से पहले, हर अजीम काम सबसे पहले नामुमकिन होता है, और हर काम हमेशा मुश्किल लगता है जब तक कि वो हो ना जाए। हर नाकामी कामयाबी को लेके चलती है। एक और जुमला लिख लीजिए, इंसान कामयाब हो नहीं सकता जब तक शुरू में नाकाम ना हो। आपने सिकंदर आजम के जुमले कई बार सुने पड़े होंगे, मैंने भी पढ़े सुने, वो जो हार रहा था तो बैठ गया, पता नहीं शायद सिकंदर आजम ही था कि नहीं, कि जिसने देखा एक चींटी इधर चली गई, गिरी फिर पड़ी, फिर गिरी पड़ी, उसको देखकर उठ पड़ा कि मैं क्यों पीछे हुआ। तो हर अजीम काम सबसे पहले नामुमकिन होता है, हर काम हमेशा मुश्किल लगता है जब तक कि वो हो ना जाए। आप अपनी जिंदगी का कोई गोल बनाइए, फिर देखिए अल्लाह ताला आपकी मदद कैसे करते हैं। और जो कोशिश करेंगे उनकी जिंदगी में नामुमकिन नहीं होता। जैसे किताब में मैंने बताया था कि अकलमंदों की डिक्शनरी में कल का लफ्ज़ नहीं होता, शायद इब्ने जोज़ी का ये कॉल है और तलबीस एलबीस में पढ़ाया होगा जो मुझे याद नहीं इस वक्त नाम, लेकिन किसी बुक में था कि जब आप कामों को कल पर डालेंगे ना, आई विल डू इट टुमारो, कल नहीं होगा, हर काम आज, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। और जब आप इस दर्जे पे खड़े होते हैं ना, अभी उठ के खड़े हों, खड़ी देखें, टाइम देखें, वक्त लिखें, दिन लिखें, डेट लिखें, गोल बना लीजिए, रियलिस्टिक गोल बनाने चाहिए, कोशिशें फिर सही की बदलें कि मैंने 6 माह के अंदर यहाँ एक वेल नोन एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट कायम करना है जिसमें सीसा पिलाई दीवार भी होगी और उसके अंदर बिल्डिंग भी सीसा पिलाई होगी, बस शुरू हो जाइए, फिर देखिए वो एक के साथ जीरो कैसे लगाता है। तो कोशिशों में कमी हमारे होती है, किसी कामयाबी को पाने के लिए सिर्फ कोशिश की नहीं, सही की ज़रूरत है। और सही और स्ट्राइव को अगर आज के दौर में एक बड़ा मारूफ सा लफ्ज़ है जुनून, और मैं इसको कहती हूँ मिशनरी जील, कोई काम पढ़ने का, पढ़ाने का, कोई टेक्निकल काम सीखने का, कुछ है, कोई कुछ है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये असूल बनाया, मैंने जो काम किसी से एक्सपेक्ट करना है, हाउ टू नो ज़रूर लेनी है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बंद कमरों में बैठकर बेहतरीन चीज़ों के लिए तैयार हो, मैं वर्कशॉप में खड़े हो के मशीन के एक एक पुर्जे को देखने को भी तैयार हूँ, मैं किचन में खड़े होते काम करने वाले को देखने को तैयार हूँ, ताकि मुझे पता तो चले इनकी मुश्किल क्या है। बहुत बड़ी एक वजह चीज़ों के ना होने की ये होती है कि जो लोग काम कर रहे होते हैं और जो करवा रहे होते हैं उनके अंदर हारमनी नहीं होती, वो उनके मसले नहीं जानते, ये अपने नहीं जानते, ये बेचारे अपनी ज़ुबान से वो बातें कह देते हैं जो पॉसिबल ही नहीं, और वो बेचारे इनके मेम को नहीं जानते। कम्युनिकेशन गैप, ये भी लिखिए, आप कोई काम करना चाहते हैं ना तो आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ जब बैठे ना तो पहले तो कम्युनिकेट करें। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हो पाती ना, उसकी वजह क्या है, कम्युनिकेशन लेवल लो है, आपको पता ही नहीं कि अगला आपसे क्या चाह रहा है। आप देखिए ना कि आज लॉकडाउन है, अब इस लॉकडाउन ने हम सबको घरों के अंदर बंद कर दिया, घर के अंदर रहते हुए अगर झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रहे हैं, मियाँ बीवी की तलाकें हो रही हैं और बच्चे परेशान हैं, तो समझ लीजिए कि आपका हार्मनी लेवल दुरुस्त नहीं। और अगर आप कहते हैं वाह लॉकडाउन आई एम इंजॉइंग माई फैमिली, हस्बैंड कहते हैं मैं अपनी वाइफ के साथ इंजॉय कर रहा हूँ, वाइफ कहती है मुझे हस्बैंड से तो अभी तो खुल के बात करने के मौका मिल रहा है, मैं बच्चों को इंजॉय कर रही हूँ, ये वक्त मेरा बच्चों के साथ गुजरता है, ये हस्बैंड वाइफ का गुजरता है, आप घर के बुजुर्गों के साथ बैठ बैठ कर दिल की बातें और दुख सुख करती हूँ, यकीन कीजिए बस इतनी सी बात है, आपको भी पता लग जाएगा कि आप अगले सालों में कामयाब होंगे कि नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि आपने मैंने खुद को एक खास मोड में लेकर आना है, और इंशाल्लाह जब आप नियत कर लेते हैं तो ये कभी नहीं हो सकता। देखिए क्या मदीना के एक इस्लामिक रियासत बनने का कोई तसव्वुर भी कर सकता था? सीरत से ताल्लुक है ना, तो आदत है सीरत की भी मिसालें देने का। आप नबी सल्लम की पूरी ज़िंदगी को लीजिए, एक बच्चा जो एक ऐसे घर में पैदा किया जाता है कि जहाँ बाप की शफकत का साया तो डे वन से ही नहीं, माँ से भी चंद ही सालों में जुदाई है, सारा मुआशरा सारा माहौल दुश्मन है, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कामयाबियाँ मिली और जिस तरह से आप एक वर्ल्ड लीडर बने, और आज भी लोग कहते हैं द मैन हु शोक दार, क्या ये मुमकिन था? वो मक्का में एक यतीम के तौर पे मारूफ बच्चा पूरी दुनिया के सर पे साया शफकत फेरता नहीं दिखता आज आपको? अगर इंसानों के बस में होता तो क्या अल्लाह के नबी को जो कामयाबियां हुई और जो खूबसूरत साथी मिले मिलते? देखिए आप लोग कहते हैं कि पैसा दे के काम करा लिया जाता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है तो आप पैसे देकर लोग खरीदिए और काम करा ले, हो सकता है इसकी भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये कामयाबी की दलील नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से लेकर, जिसको आप कह लीजिए कि नौन नामों में से बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु, यानी अबू बकर अमीर तरीन शख्सियत थे मक्का की, और हम सिम्बॉलिकली कह देते हैं कि हजरत बिलाल, और इसी तरह अब्दुल्ला बिन मसूद और सुहैब रोमी, ये सब गरीब तरीन लोग थे। दोनों का पढ़ते पढ़ाते कभी आपको ये फील हुआ पैसा कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, कि चूंकि वो बड़े अमीर थे तो फिर पैसा लगा लगा के नेकियों में आगे चले गए, और बिलाल बेचारे गरीब थे तो पैसा तो था ही कोई नहीं, चलो फिर कुछ पैसे बिलाल को भी दे दो अजान देने के, ये तो मुझे लफ्ज ही नहीं कहीं मिला, सीरत की डिक्शनरी में ये लफ्ज नहीं है। एक दर्जे के खूबसूरत इंसान, आप देखिए दौलतमंद तो वलीद बिन मुगीरा भी बहुत था, अबू बकर सिद्दीक भी बड़े खूबसूरत और दौलतमंद थे, दोनों ही माशरे में बहुत, जिस तरह आप आज के दौर में कहें ना कि एस्टेब्लिश नोन किस्म के डोनर थे, ये आप सूरह बय्यिना तदब्बुरुल कुरान की सुने, ये कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर होगा इंशाल्लाह। इस्लाम के आने से पहले बहुत सारे लोग अपने हिसाब से बड़े अच्छे थे, लेकिन अल्लाह के नबी के आते ही वो सब निखर के सामने आ गए, बय्यिना, तभी तो कहते हैं रसूल मिन अल्लाह ही, अल्लाह के नबी बय्यिना थे, किसी जगह नेकी का कोई काम करने का मौका बनना, वहां किसी दाई दीन का आना, किसी आलम दीन का आना, किसी उस्ताद का आना और फिर उसका गाइड करना लोगों को एक बहीना होती है। या लोग निखर जाते हैं या लोग बिखर जाते हैं, हर एक अपनी असल पे आता है। बहुत सारे लोगों ने अपने पर कुछ ना कुछ नेकियों का विनीर चढ़ाया होता है, कुछ तो करना है ना, लोग उससे आपको बहुत नेक समझते हैं। अबू बकर सिद्दीक बहुत नेक थे, मारूफ उस माशरे में। वलीद बिन मुगीरा भी बहुत नेक, और जिसको आप कह के डैशिंग पर्सनैलिटी थी उसकी, जो देता है, जो खात जिसका ऊपर होता है लोग उसको पसंद करते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन जो ही अल्लाह के नबी भेजे गए, फ़र्क समझ आ गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक अंदर से भी खड़े थे और वलीद बिन मुगीरा ने ऊपर कोटिंग की हुई थी। इसी तरह हर मुआशरे में अपने मकसद के साथ जुड़े हुए लोग इन दो में से एक किस्म पे होंगे। कुछ ऊपर ऊपर से साथ होते हैं, अंदर से नहीं होते। कुछ को अपनी नेकियां तो बड़ी प्यारी होती हैं, मैं नेकियां बढ़ा लूं जिस कीमत पे जहां मिले। दूसरों को नेकियों से ज्यादा मकसद प्यारा होता है, मिशन प्यारा होता है। लेकिन इनफरादी नेकियां क़यामत के दिन बहुत लाइट वेटेड होंगी। जो भारी नेकियां होंगी ना, वो इज्तमाई नेकियां होंगी। हमारे दीन का मिजाज इज्तमाइत का है। तो कल के जुमलों में से चंद जुमले आपके साथ गो थ्रू करके अब आगे कुछ मज़ीद चीज़ें आपको कि हम इस वक्त जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग के सेशंस ले दे रहे हैं, जिसमें आज थोड़ी सी बात मैंने नथिंग इज़ इम्पॉसिबल करके गोल सेटिंग में आपको एक नुस्खा सिखा दिया कि जब भी कोई गोल बनाएं तो इसके ऊपर एक बड़ा बड़ा लिख लीजिए इट्स पॉसिबल। डेट भी लिख दें, इट विल बी डन टिल दिस डेट। बस उसके बाद दुआएं, तवक्कुल और कोशिशों को सही में ला लें। अंदर से अल्लाह से जुड़ते जाएं, बाहर से लोगों से रबते रखते जाइए, फिर देखिए आपका जहन कैसे काम करता है। यानी पीछे जब हमने देखा कि इंसानी जहन एक पावर हाउस की तरह काम करता है, जिसका मकसद क्या होता है कि लोगों को पावर सप्लाई करे। तो हमारे जहन में अल्लाह सुबहाना ताला ने खास एनर्जी सेट की हुई है। आप देखिए कि बल्ब की तस्वीर पर नजर डालिए, बल्ब कभी 60 वाट के भी होते हैं, कभी 100 वाट के भी होते हैं, कभी 120 के भी होते हैं। इसीलिए आपके सामने एक बल्ब की तस्वीर रख दी जाती है कि ज़रा सा आप इसको देखें। कल भी जब मैं ये सेशन कर रही थी तो मैं इस पिक्चर पे गौर कर रही थी, ये है एनलाइटनिंग द हार्ट्स एंड ब्रेन्स। आज के दौर में हमें ब्रेन्स को एनलाइटन करने की ज़रूरत है। एक बच्ची हमारे पास पड़ी, बहुत ही दूसरे एज से वापस आई हुई थी, कि उसके लिए कपड़े क्या पहनने हैं, बाहर जाने वाले हाल में हूँ भी कि नहीं, इसके लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं था। और इसी तरह से यानी बहुत ही फ्री कह लीजिए माइंड बच्ची थी। अल्लाह ने कुरान दिया, हाथ लगा कुरान पढ़ने लगी और फिर अल्लाह ने सभी कुछ बदल दिया। तो उसने ये जुमले बोले थे किसी को, जब उसने किसी को दावत दी, मैंने पढ़ा, मैंने सीखा, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ दिस एंड दैट, किसी ने उसको कह दिया छोड़ो तुम्हारा तो ब्रेन वॉश कर दिया नूरुल कुरान वालों ने, तो उसका वो जुमला यहाँ लिख लीजिए, हो सकता है उसका जुमला ही उसके लिए और मजीद नेकियों का जरिया बन जाए। कहने लगी मेरा ब्रेन वाकई इस काबिल था कि वॉश किया जाता। तो आप इस बल्ब की तस्वीर को देखिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे ब्रेन को वॉश कर दे। साफ सोचे, निथरा हुआ जहन, फुल एनर्जेटिक। अगर ये 60 वाट का टुम टुमाता हुआ बल्ब है ना, तो अल्लाह इसको तू जो सबसे बड़ी वाट है ना उस पर कर दे। और ये कब होगा, जब आप अपने गोल्स को जानेंगे और आपका विजन क्लियर होगा, करना क्या, किधर जाना। लिखिए कब क्या करना है, 2020 ये, 21 ये, 22 इधर, 23 इधर, 25। अगर आपके पास आपके अगले 5 सालों का कैलेंडर है ना, तो मैं आपको मिडल पे ले आती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई आपका विजन भी क्लियर है, आपकी सोच बहुत क्लियर है। और अगर आप में से किसी के पास अगले 10 सालों का प्लानर है ना, तो मुबारक हो। ये लोग चाहिए, किसी भी काम को अहसन दर्जे पे करने के लिए एक यकीन की ज़रूरत होती है। और वो यकीन क्या है कि एक इंसान पहले से सोच के रखे। यानी आप मुझसे भी ये सवाल पूछ सकते हैं, आपको पूरा हक है कि ये बताइए जी कि आप अगले 5 साल का कोई गोल बना के बैठे हुए है आपके पास कुछ, तो मैं कहूँगी यस अल्हम्दुलिल्लाह, वाई नॉट। चलिए कोई जुरत करके पूछता है कि अगले 10 साल का भी कोई प्लानर है आपका बना हुआ, मैं कहूँगी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक का प्लानर बनाया हुआ। वल्लाह ये झूठी बातें नहीं है, नो एग्जेजुरेशन एट ऑल, नथिंग। वो किस फॉर्म में बनाया है वो फाइल, आप कहेंगे अच्छा हमें जरा अपनी कॉपी तो दे दें, उसकी कोई फाइल तो दे दें, कोई शेयर तो कर दें हमारे साथ, कोई फायदा नहीं होगा। अपने प्लानर कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद बनाने पड़ते हैं। रोज हर कोर्स का फ्लायर बनता है, एक एक क्लास, दिन में शायद 20 फ्लायर बनते होंगे और प्लानर्स डेली आते जाते हैं ग्रुप्स में, उन पर भी मेरी नज़र होती है। लेकिन एक मेरा अपना प्लानर है, कुछ करीबी लोगों को तो पता होता है, जैसे मैंने जिक्र किया था पीछे भी कि हकीकत है कि आपके करीबी जो लोग होते हैं ना, आप उन पे बहुत खुल जाते हैं। आप जब नेट पे आते हैं, आप जिस तरह पब्लिक फिगर बन जाते हैं ना, तो आपको साफ समझ आने लग जाता है। आपके साथ वालों को पता, देखना आगे ये बोलेंगी। जैसे कुछ स्टूडेंट पिछले 20 साल से सुन रहे हैं, तो मुझे गुमान है, और एक आध ने कभी शेयर भी किया कि आप कुछ बोलती हैं ना, तो मैं उससे अगली बात समझ आ जाती है, अब आगे आप ये बोलेंगी। इट्स ट्रू, ये कुछ छुपी हुई बातें थोड़ी हैं। एक एक लफ्ज डायरेक्ट जाता है नेट पे, बगैर किसी फियर एंड खौफ के, कि ये ना सुन ले वो ना सुन ले। क्लैरिटी ऑफ माइंड है। तो दूसरी चीज़ जो हमने पिछले सेशन में देखी थी, वो क्या थी कि माइंड लेवल दो तरह पे काम करता है। हमारे जहन की जितनी कैफियत है ना, अगर आप उसको एक बदतरीन और एक बेहतरीन की कैटेगरी में रख लेना, तो बेहतरीन हालत वह जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्लैरिटी ऑफ गोल्स, शफाफियत, फेयर डीलिंग्स, किसी के साथ ज्यादती नहीं, किसी के साथ बुग़्ज़ और हसद नहीं, किसी मसलक फिरके जमात किसी मुस्लिम गैर मुस्लिम के खिलाफ बात ही नहीं करनी आपने, तो आप नेट पे डायरेक्ट चले जाएं। आपको जाके किसी बड़े बड़े चैनल और CNN और फलां फलां न्यूज़ चैनल पे आपका कोई लाइव ले ले, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इस्लाम का पैगाम इतना पीसफुल, इतना क्लियर है कि जिसके बाद आपको डर ही नहीं रहता फलाना सुन ले फलाना कह दे। ठीक है, अल्लाह फितनों से बचाए, वो तो अच्छी बात कहने वालों पे भी आते हैं और बुरी बातों वालों पे भी आते हैं। गुलूकारों अदाकारों और सियासतदानों पे भी लोग कीचड़ उछाल सकते हैं, ये सिर्फ अल्लाह की मदद से ही बंदा बच सकता है और कोई नहीं। लेकिन क्लियर कैफियत, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि मेरे पास 5 साल का भी प्लानर है, अगला 10 का भी है, और मैं अक्सर जाहिर घर वाले जो अपने करीब होते हैं, मैं उनको कहती हूँ, देखिए ये मेरे प्लान है, अगर मुझे कुछ हो गया तो आपने इसको आगे लेके चलना है। हर पेरेंट, हर माँ बाप के पास क्लियर प्लान होना चाहिए। एक दिन बच्चों को बिठा कर सारा सुना दें, बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सोचा हुआ, अगर मैं ये सब कर गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर मैं ना कर सकी तो आपने करना है। आप कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे औलादों को ये हुक्म दिया है कि उनके माँ बाप के जाने के बाद उनके कर्जे अदा करें, उनके छुट्टे हुए रोजे भी रखेंगे, उनकी मानी हुई मन्नतें और नजरें भी पूरी करेंगे, उनके इरादों को बनाना है। तो अपनी औलादों को बताइए, वट डू यू लाइक फॉर योर सेल्फ, और याद रखिए अपने प्लानर्स और अपने गोल में अपने साथियों का नाम डालें। और मेरी तो यही की दुआ है कि अल्लाह, मैं जिन लोगों के साथ डे वन से चल रही हूँ ना, मैं अपनी ज़िंदगी के आखिर तक उनके साथ चलूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई मेरे से पीछे ना हो, फिर मेरे बाद जो इनके नसीब, जो इनके बापते हैं और मिलते जाएं, पिछला एक भी ना जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकती हूँ कि इसमें मैं बहुत हद तक कामयाब हूँ। इस पर मेरा अल्लाह पे बड़ा गुमान है। बहुत सारे लोग हैं वो सारी ज़िंदगी यही नहीं डिसाइड कर पाते कि हमने किन के साथ काम करना है तो किन के साथ नहीं करना। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनके साथ डे वन से पहला स्टेप लेते हैं ना, अगर आप उन्हीं के साथ एंड तक चले ना, तो आपका माइंड बहुत क्लियर हो जाता है। इशारे समझने लगते हैं लोग आपके, उनको बताना और खपना नहीं पड़ता। आप हर 4 दिन बाद एक नया बंदा लेकर खप रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, क्या करेगा? और क्या हाल है जब कोई ट्रेन होता है तो लोग चले जाते हैं। कितने टीचर्स, कितने इंस्टीट्यूट्स को रन करने वालों ने मेरे साथ ये बातें की। मसला ये है कि लोग टिकते नहीं हैं। बच्चियां हैं तो उनकी शादियां हो जाती हैं, औरतें हैं तो उनके हालात बदल जाते हैं, कोई मूव हो जाता है। तो क्या हुआ, आप चुपते कपड़े पहनकर काम कर रहे हैं, चुपते कपड़ों में सो रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं है कि आप पुराने कपड़े पहनते रहें और नए घंटे के लिए पहन के उतारें और 4 दिन के बाद किसी को दे दीजिए। तो बात समझ आ रही है, बेहतरीन क्लैरिटी के साथ जिए। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक थिंग्स पॉसिबल, देन वी नीड टू बी क्लियर, वी नीड टू बी वेरी फेयर। कोई गीबत ना हो एक ही दूसरे से, दूसरे की उससे। मनी मैटर्स में आपके हाथ बिल्कुल इमाम बुखारी की तरह क्लियर हो। आपका किसी एक के साथ फेवरेटिज्म, दूसरे के साथ कोई लेग पुलिंग वाला स्टाइल ना हो, वेरी क्लीन। तो बस आपकी ये हालत बेहतर है। बेहतरीन कैफियत उन्हीं लोगों की होती है जो अंदर से खरे और सच्चे हैं और जुबान के मीठे हैं। मसला ये कि हम जब अंदर से खरे सच्चे होते हैं तो जुबान के कड़वे होके बल्कि कहते हैं मैं दिल में नहीं रखती, मैं मुंह पे बोलती हूँ। बस एक सास है, वाकई खरी हैं, सच्ची हैं, किसी की बुरी नहीं, पर उनकी जुबान इतनी कैली खरी क्या कुंद हो गई कि वो जिसकी जो बुरी बात देखी उधर इसको टोक दिया। बहू में को बुराई देखी, जो आया घर में का मेरी बहू ऐसी है, वैसे मैं दिल में नहीं रखती, मैं जुबान की साफ हूँ। भी बेटा दिल पे ना लेना, कैसे ना ले वो दिल पे, रो पड़ेगी वो बच्ची छोटी सी जो आई आपके घर में। तो बात समझ गए होंगे, आप एक बॉस हैं और आपके साथ साथी काम कर रहे हैं, वो आपके कलीग्स हैं, वो आपके साथ आपके अंडर हैं वो है, लेकिन आपके उनके साथ ताल्लुकात में बहुत शफाफियत होनी चाहिए। आप सियासत पे चले जाएं। आज सुबह से पता नहीं कि एक जुमला दिमाग में आ रहा है कि सियासतदान वो बने जिसमें तनकीद सुनने का हौसला हो, लीडर वो बने जिसमें तनकीद सुनने का हौसला हो, जिम्मेदार वो बने जिसमें तनकीद सुनने का हौसला हो, एडमिन वो बने जिसमें तनकीद सुनने का हौसला, और उस्ताद और टीचर वो बने जिसमें तनकीद सुनने का हौसला हो। ये कभी हो नहीं सकता कि आपका एक स्टेप ऊपर हो और लोग आप पे तनकीद ना करें। तो जब तनकीद पे ही आपका दिमाग घूम गया और आप गुस्से में बोलेंगे, तो वो जैसे मुर्गियों की तरह लड़ते हैं बास लोग बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे, सियासत के नाम पे, मसलक के नाम पे। आप दो तीन मसलकों के उलमाए कराम को बिठा लेते हैं कि आओ जी इस मसलों को हल करें। अल्लाह के बंदो, ये काम बंद कमरों में बैठ के करके सारे हाथ में हाथ डाल के बाहर आए, फिर बात बनेगी। ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं जो आज स्क्रीन पे आ गया कि जी सारे मसलक के उलमा को बुलाकर बिठाते हैं, फिर वो चुंचे लड़ाते हैं, फिर वो गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं या आपके बाप की जागीर, वो आपके बाप की जागीर। क्या आप लोगों को दीनी प्रोग्रामों के नाम पे सोशल मीडिया से क्लैरिटी दे रहे हैं, शफाफियत दे रहे हैं? आप नहीं दे रहे। एक बंदा एक बात करता है, दूसरा दूसरी करता है, एक चैनल किसी और चीज़ को प्रमोट करता है, दूसरा उसके खिलाफ है। तो दुआ कीजिए कि आपकी मेरी सोच बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इसके लिए एक जुमला याद रखिएगा अपनी ज़िंदगी का, जमे रहेंगे ना, एक गोल लेकर उसके पीछे भाग रहे हैं ना, तो आपको आखिर में क्या होगा, अकेले को नहीं कामयाबी होगी। मैंने ज़्यादा नहीं देखा लेकिन मुझे अंदाज़ा है स्क्रीनों पे देखकर, फुटबॉल मैच होता है, एक बॉल होता है, 6-7 खिलाड़ी उसके पीछे भाग रहे हैं, कई दफ़ा वो बॉल को किक करते करते दूसरे के पाँव पे पाँव पड़ जाता है। कोई अक्लमंद सोचे, एक बॉल थोड़ा कुछ बहुत महंगा आता है, लो मैं तुम्हें डोनेट करता हूँ, 3 बॉल फेंक दे ग्राउंड में कि जाओ भाई इसके पीछे भागो, बताइए क्या होगा? गेम खत्म, गेम इज ओवर, बॉल एक है, 10 लोग उसको लेने की कोशिश में हैं, बस ये समझ जाएंगे तो बात समझ आ जाएगी। करना क्या है आपने कि एक काम में लगे हैं तो लगते जाइए। अगर आप में खूबियाँ होंगी अल्लाह आपको सामने लाएगी, अल्लाह की वादे। यूसुफ अलैहिस्सलाम में खूबियाँ थी ना, तो जेल की सलाखों में से निकलते हैं और मिस्र के वजीर खजाना बना दिए जाते हैं। आप कहते हैं मुसलमानों को लेट डाउन करते, जॉब्स नहीं देते, अब हमें कहते हैं अपने मुल्कों में जाओ। आप वो बच्चे क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे कि जिनको यूनिवर्सिटीज़ फारिग करने से पहले जॉब्स दे दें, कि अच्छे स्टूडेंट्स को तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, और 80% अच्छे स्टूडेंट उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ और उन्हीं इदारों में रख लिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सारे एसेट्स को बाहर तो नहीं देना होता। तो फिर आपने मैंने जहन को क्लैरिटी के साथ रखना है। फिर आप देखिए तजब्जुब की कैफियत, ये बदतरीन है। और तजब्जुब क्या, डबल माइंडेडनेस, इस पर हमने काफ़ी बात कर ली कल कदरे डिटेल से। इसकी 4 मुख्तलिफ कैफियत आपको बताई गई थी। एक है खौफ, जो बंदा खौफ सता ना कभी उसका माइंड सही काम नहीं करेगा, खौफ तो बंदे के अंदर की सारी खूबियां भी ख़त्म कर देता है। फिर दूसरी चीज़ होती है बेयकीनी, आपको खुद ही नहीं यकीन कि आप कुछ कर सकते हैं तो आपको मिलेगा कैसे। जैसे कुछ लोग कहते हैं होगा कैसे, बातें तो सारी करते हैं। तो एक जुमला लिखिए, जेम है, हाउ लव्स को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए इफ यू वॉन्ट टू मेक इट पॉसिबल। इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलने का नुस्खा होगा कैसे, हाउ, इसको निकाल दीजिए। देखिए यकीन तो पानी पे चला देता है, यकीन लाइए। यकीन मुहकम अमल पहम, ये अमल पहम पे बात हो रही है, पहले शुरू में की है कि मुस्तकिल काम कीजिए, कोशिश को सही में और स्ट्रगल को स्ट्राइव में बदलिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद होगी। और बाज लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं और दूसरे लोग उनके ख्वाबों को पाँव के नीचे रोल देते हैं। अलामा इकबाल से, अगर अल्लाह ने ख्वाब दिखवाया था वो जिस्मानी ख्वाब था या रूहानी था, लेकिन उस ख्वाब की तबीर मोहम्मद अली जिनाह के ज़रिए अगर पाकिस्तान की सूरत में आज आपके पास है, तो खुद से पूछिए कि आपने फिर इन दोनों बुजुर्गों की कोशिशों की किस हद तक केयर की। बस लोग आपके ख्वाबों की कदर नहीं करते, कोशिश कीजिए उनको अपने साथ ही ना रखें। ना कदरे लोग होते हैं, आप उनके साथ बैठते हैं, हम ये करते हैं, आइए हम इधर ये क्लास शुरू करते हैं, हम उधर ये ना कर लें, अच्छा 1 साल में ये कर, छोड़ो जी किधर करना है, इतनी मेहनत कर ली कोई नहीं आएगा। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों से 1 मिनट बात ना करें आप, सिर्फ उन लोगों के साथ बातें करें, उनके साथ प्लानिंग करें, मीटिंग्स करें जिनको आपके ख्वाबों की कदर है, और फिर अपने ख्वाबों के साथ कमिटमेंट करें, फिर इनको लीजिए। और ज़िंदगी में याद रखिए कि एक और चीज़ जो बेयकीनी के बाद आती है, जिससे बंदा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है, वो अदम तहफ़ुज़ है। इनसिक्योर नहीं होना दीन के नाम पे तो कभी भी नहीं होना। और याद रखिए ये इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आज बहुत सारे लोगों को, बावजूद इसके कि हक जानते हैं मानते हैं, लेकिन उसके लिए खड़े नहीं होते, नहीं पे घर में ये होगा वो होगा ये होगा। और याद रखिएगा चौथी चीज़, नाउम्मीदी को खुरच दें। अगर आप नाउम्मीद हैं तो आप बैड वर्स्ट स्टेट ऑफ माइंड में हैं। तजब्ज़ब लिखिएगा, आपकी मेरी ज़िंदगी में अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये बात समझ गए। तो लोगों की तैयारी के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और लोगों को तैयार करने के लिए सब्र, हौसला और इंतहाई अनथक मेहनत चाहिए होती है। ये ऐसे नहीं बनता। आप देखिए, फैक्ट्री में हो सकता है एक मॉडल पे 50 चीज़ें वैसे ही बन जाएं, जस्ट कॉपी करते जाएं। लोगों की तैयारी में एक एक बंदे के ऊपर नज़र रखनी पड़ती। इसके लिए लोगों को एनर्जी देने के लिए हमारे पास वो टूल बॉक्स ही नहीं होता जिससे लोग तैयार होते हैं। वो यकीन ही नहीं होता अपने गोल को हासिल करने के लिए। तो बास दफ़ा तो वो कहते हैं ना कि दो गाम रह गई मंजिल तो हम पलट आए। हमारा हाल ये होता है, हम बिल्कुल कामयाबियों के करीब तरीन पहुंचे होते हैं, लेकिन हम उससे पीछे ही पलट आते हैं। हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते। याद रखिए, जिसके गोल क्लियर्स नहीं, उसके रिलेशनशिप कभी भी दूसरों से अच्छे नहीं होंगे। लोग कहेंगे कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। तो जितना ज़्यादा आप और मैं अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं, उतना आप अपने रिश्तों को, अपने लोगों को लॉकडाउन में रखिए। लॉक कीजिए अपने ताल्लुकात को। आप बोले ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है। हर बंदे से आपको ऐसे लगे कि ये सबसे प्यार है, और बंदों को आपसे मिलकर लगे इनको सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार है। तो खुलासा क्या है? शफाफियत क्या है? आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ क्लियर हो, आपके दोस्त भी जानते हों कि आपका गोल क्या है ज़िंदगी का, और आपके दुश्मन भी जानते हों कि आपके नज़रियात क्या हैं, आपका फ़लसफ़ा क्या है, आपके दाएं बाएं हर चीज़ आपके बारे में गवाहियां दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हो गई।